Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we should also be taking calls from you all, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2342-1050 and 2331-4444. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your hostess Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंथ में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर हम नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे. आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सवाल भी कर सकते हैं. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें 2342-1050 और 2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें. और नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, 2342-1050 और 2331-4444. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल. यामिनी जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस बता रही हैं मेरी सहयोगी लालिमा अनुजा डेंग.
धन्यवाद विभूति जी. यस, द हेडलाइंस फर्स्ट. फ्रेंड्स, एनीवन फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन फॉरवर्ड ट्रेड ऑफ पल्सेस वुड बी डेल्ट विद फर्मली, says Consumer Affairs Secretary. To ensure maximum power generation during the summer, the government has issued directions to all gas-based generating stations. In the US markets, all three major indices fell more than 1% and registered losses on the week. And oil rose around 1% on Friday on geopolitical tensions in the Middle East. Brent crude futures settled up at above $90.
उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव ने कहा है कि दालों के वायदा व्यापार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से कड़ाई से निपटा जाएगा. गर्मी में अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने गैस आधारित उत्पादन केंद्रों को निर्देश जारी किया. अमेरिकी शेयर बाजार में इस सप्ताह नुकसान दर्ज हुआ. सभी तीन प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक गिरे. और मध्य पूर्व में तनाव के कारण शुक्रवार को तेल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी. ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $90 के ऊपर.
All right, before we go any further and discuss the stories, let's talk to Yogesh calling us from Delhi. Yes, Yogesh ji, sawal poochhe apna ji. Hello Yogesh ji. Hello.
Hello
ji. Ji, apna sawal poochhe Dr. Yamini se ji.
Ma'am, mera sawal ye hai ki hum kai baar sunte hain ki crude oil ka daam upar niche hota rehta hai, ye kis tarike se asar dalta hai share market pe? यानी कि क्या ये किसी खास सेक्टर में असर डालता है? और एक समय मेरा सवाल ये था कि इंडिया जो है एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जो 5,000 से ज्यादा हैं, तो ये क्या अच्छा संकेत है?
जी देखिए, जहां तक क्रूड ऑयल की बात है, क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं और इम्पोर्ट करती हैं और जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें खरीदती हैं, वो सभी बाजार में आकर के इसका मूल्य आंकते हैं. और ज्यादातर कोटेड प्राइसेस होती है ब्रेंट क्रूड ऑयल की, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो जो पर बैरल जिस भी प्राइस पे बिकता है वो फिर जो है उसी प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट्स करके जो है वो ऑयल अपने डोमेस्टिक कंट्री में लाया जाता है। क्योंकि ऑयल एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट रॉ मटेरियल है, और क्योंकि वो एक इनपुट रॉ मटेरियल है वो ये निर्धारित करता है कि बाकी के जो कॉस्ट होंगे प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के वो उस पर कितने डिपेंडेंट होंगे। क्योंकि ओवरऑल जब भी इनपुट की बात करते हैं, जब जो भी इनपुट के कॉस्ट होते हैं उसमें मुनाफा जोड़ करके देखा जाता है कि किस प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल किए जा सकते हैं, और ये एक बहुत मुख्य तौर पे बहुत ही जरूरी कहते हैं पदार्थ है, क्योंकि 80% हम इम्पोर्ट करते हैं और इसकी जो प्राइस है वो सीधा ट्रांसलेट होती है महंगाई दर पे या इन्फ्लेशन पे। जहां तक कंपनीज लिस्टेड की बात है, आपने कहा 5000 कंपनीज लिस्टेड है। लिस्टिंग का अर्थ ये होता है कि जो कंपनीज कैपिटल मार्केट्स या जिसे हम कहते हैं जहां से आप पैसा उठा सकते हैं मार्केट से, वहां से यहां जहां पे आपके शेयर्स ट्रेड करेंगे वहां पे कितनी कंपनीज लिस्टेड है और वो कितनी अपने बारे में सूचनाएं देती हैं पब्लिक को। 5000 एक अच्छा नंबर माना जाता है और वो ये दिखाता है कि ये सभी कंपनीज कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर किसी कंपनी को अपनी पैसे के लिए जरूरत हो तो वो पब्लिक तक जा सकती है और पैसा उठा सकती है, और साथ ही साथ काफी हद तक एक ट्रांसपेरेंसी जो लार्ज और मीडियम और स्मॉल कैप की कंपनीज हैं उनमें पारदर्शिता लाती है उसकी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सूचना होता है, साथ ही लोग निवेश कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं ट्रेडिंग के माध्यम से।
राइट, वी आर जॉइंड बाय जितेंद्र कॉलिंग अस फ्रॉम जयपुर। जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछें। जी
हाँ, थैंक यू। अच्छा मैडम, पिछले एक महीना में कौन सा सेक्टर डाउन हुआ ज्यादातर, क्योंकि उसमें खरीदारी किया जा सके, ये पहला प्रश्न, कौन सा सेक्टर डाउन हुआ पिछले एक महीने में। दूसरा प्रश्न है कि जैसे सुवेनियर गोल्ड बॉन्ड है तो क्या सरकार को सिल्वर बॉन्ड नहीं लेके आना चाहिए?
जी देखिए, जहां तक सेक्टर्स की बात है, खासतौर पे अगर आप वो सेक्टर्स की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल रिस्क से अफेक्ट हुए हैं, वो कुछ सेक्टर्स रहे हैं जिसमें आईटी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है खासतौर पे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क रहे हैं। और भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं आप जिनमें देखें इंडस्ट्री को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी है और प्राइसेस राइज होती हैं और चीजें होती हैं, तो एक आईटी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें हमने नुकसान देखा है। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पूछे तो कोई ऐसी स्पेसिफिक मेजर मूवमेंट्स नहीं रही हैं, पर अगर आप मार्केट्स देखें तो वॉलेटिलिटी ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक में रही हैं। जहां तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात है, देखा जाता है और माना जाता है कि भारतवर्ष में कंजम्पशन के माध्यम से गोल्ड की स्थिति काफी रहती है, क्योंकि एक इसे इम्पोर्टेंट कंजम्पशन आइटम भी मांगते हैं और एक सेविंग्स आइटम भी मांगते हैं, खासतौर पे स्त्रियों के स्तर पे और हाउस होल्ड के स्तर पर। लेकिन ये एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट नहीं होता, क्योंकि ये वापस पैसा इकोनॉमी में नहीं आता और फिर लोगों के हाथों से गुजरता नहीं है, और जिससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम होती है। उसी को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लाए गए, जहां पे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप गोल्ड जैसी एक इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं जो गोल्ड की प्राइसेस से बेंचमार्क रहता है, और आप उसी के ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट देते हैं। इसका ज्यादातर आइडिया यही था कि जो है लोग गोल्ड में निवेश ना करके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें, जिसके माध्यम से क्रेडिट जो इंडस्ट्री को या गवर्नमेंट को मिलना चाहिए ताकि वो आगे निवेश कर सके वो मिल सके।
Sovereign gold bond, if you buy, Dr. Yamini, then you pay the same amount which is existent on that particular day, and after 5 years, you can capitalize on that, and you get this, that amount of money which is the prevalent of the price of gold on that particular day. Right.
The last I remember was the sovereign gold bond was 8 years as the maturity period, and I remember I think there was a lock-in of 3 years or something like that. One has to check for that. Right. Also, there was an annual interest rate of 2.4 or 2.5%.
Right.
When once you actually finally they mature it at after 8 years or after the lock-in period, you will get the price that is prevalent of the gold at that point of time.
Right.
The price at which it is offered is usually benchmarked to the market, but it is not benchmarked or benchmarked depending upon the issuer itself.
Right.
इसी बीच मुंबई से हमारे श्रोता हैं मोहनीश. मोहनीश जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें.
जी नमस्कार सभी को. यामिनी जी से मेरा सवाल है कि ये गोल्ड से रिलेटेड ही सवाल है कि मैम जरा ईटीएफ के बारे में बताइए, क्या हम जो पैसा निवेश करते हैं ईटीएफ में वो सीधा जो कंपनी है वो उसके उसी सेम क्वांटिटी का गोल्ड खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, या वो किसी और चीज के लिए यूज होते हैं बट हमें जो सिक्योरिटी दी जाती है वो गोल्ड से पैरेलल दी जाती है?
आप फुल फॉर्म बताएंगे, आप किस चीज की बात कर रहे हैं?
गोल्ड ईटीएफ मैम.
गोल्ड ईटीएफ
जी
ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैक्ड बाय गोल्ड होती है जहां तक मुझे याद है. और इनका पर्पस अगेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का होता है कि आपको ओवरऑल लिक्विडिटी प्रोवाइड करें और इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू प्रोवाइड करें, और क्योंकि ये गोल्ड है तो उन्हीं कंपनीज में होती हैं जिनका निवेश गोल्ड में होता है या गोल्ड से रिलेटेड होता है.
All right, we are now joined by Khush from Raigarh. जी खुश सवाल पूछें अपना.
जी नमस्कार मैम. यामिनी जी को मेरा नमस्कार.
जी नमस्कार.
जी मेरा सवाल ये था कि डॉलर के ऊपर या नीचे होने से स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या डॉलर को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीद के रख सकते हैं?
जी देखिए, डॉलर एक फॉरेन करेंसी है और उसमें निवेश नहीं किया जाता क्योंकि वो एक फॉरेन करेंसी है और वो अलाउड नहीं है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के तहत. लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जिसकी अर्निंग्स हैं गोल्ड डॉलर के अंदर, तो आप अब इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं यूएस डॉलर में और भी कुछ करेंसीज में कुछ बैंक्स के साथ. जहां तक डॉलर और रुपए की स्थिति है वो एक रुपए एक्सचेंज रेट है, और इस एक्सचेंज रेट के तहत आप अपनी जो एफआईआई की मूवमेंट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो किस मूल्य पे आएगी वो भी डिफाइन कर सकते हैं, और जितने इम्पोर्ट्स आ रहे हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं. जहां तक स्टॉक मार्केट्स की बात है, क्योंकि एफआईआई फ्लोज होते हैं वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके आरओआईज क्या होंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा रुपए चाहते हैं एक डॉलर के मुकाबले, इसलिए उनके लिए डेप्रिशिएटेड डॉलर ज्यादा बेहतर होता है, डेप्रिशिएटेड रुपी ज्यादा बेहतर होता है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि वो ज्यादा निवेश कर पाते हैं.
हमारे साथ दिल्ली से दिवांग पांडे जुड़े हैं, हम उनसे प्रश्न लेंगे. उससे पहले एक खबर श्रोताओं को बता दें, सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि दालों के वायदा व्यापार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से निपटा जाएगा. उपभोक्ता कार्य विभाग ने 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन स्टॉक निगरानी के संचालन के लिए दाल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सिलसिलेवार बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं. यामिनी जी, बस एक मेरा प्रश्न है, फिर देवांग जी के पास जाएंगे, कि सट्टेबाजी को लेकर के जो मतलब ये जो एक कदम उठाया गया है, तो कहीं न कहीं से ये है कि जनता के हित में है और इससे उसके रेट पे एक स्थिरता रहेगी.
जी देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कि आगे माना जाता है कि प्राइसेस बढ़ सकती हैं, और उसकी वजह से जो व्यापारी होते हैं वो अपना प्राइस बुक कर देते हैं. पर अगर कहीं पे भी आशंका हो कि सट्टेबाजारी होगी या कुछ होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड किया जाता है ये जान करके कि आगे फ्यूचर में ये प्राइस ना डिटर्मिन करें. जिसका मतलब है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे होंगे और मार्केट में ये दिशा निर्देश दिया जाएगा कि प्राइसेस शूट कर सकती हैं या गिर सकती हैं, तो उसको रोकथाम के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है कि स्पेकुलेशन किसी भी प्रकार की खास तौर पे एसेंशियल कमोडिटीज में रोकी जाए.
जी, इसी बीच देवांग जी अपना प्रश्न पूछिए आप.
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. आई हैड अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर अग्रवाल.
यस प्लीज. यस,
इफ वी कंपेयर माइक्रो कैप इंडेक्स टू स्मॉल कैप इंडेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years, सो व्हिच इंडेक्स इज Probably, which index will give more returns?
Well, it's difficult to say which index will give you more returns. One has to actually analyze the indexes that are supposed to be giving returns and then identify where the return would be available. But as far as industries are concerned, there have been a lot of effects of the COVID on these micro, small and medium enterprises, primarily because of the working capital issues that have been affected in terms of the overall recoveries, also of the compilation effect of the COVID factor, which had led to lockdowns and also delayed production and difficulties in providing employees with the requisite salaries and even paying for the interest payments that were there. So the largest segment that was ever affected was the micro, small and the medium enterprises. However, some companies also did take opportunity in terms of the opportunities that were available at that point of time in terms of engaging themselves into delivery of services which were through the virtual mode or the others, or even in terms of the commodities that were needed at that time, like the PPE kits or the masks or the others. So that's where some of the small and the medium as well as the micro companies did gain. So you will have to see fundamentally which companies are how strong and what are they working on.
इसी बीच थाने से हमारे एक श्रोता हैं गुरनाथ. गुरनाथ जी अपना प्रश्न पूछिए.
हेलो
हेलो गुरुनाथ जी.
हेलो
मैम नमस्कार.
नमस्कार, ये हमारे बहुत रेगुलर कॉलर हैं.
जी जी
विभूति जी. जी सवाल पूछे गुरुनाथ जी. जी
यमिनी मैम को भी नमस्कार.
जी नमस्कार.
मैम मेरा क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड है. मैम जो मॉनेटरी पॉलिसी बीच में आई थी तो ये सातवीं पर मतलब जैसे थी रखा है, तो इसके पीछे आरबीआई का मतलब क्या लॉजिक, क्या पर्पज है? थैंक यू मैम.
जी देखिए, रेपो रेट्स को जो है अनचेंज रखा गया है. कोशिश यही की गई है कि ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे और जो इकोनॉमिक सपोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करनी चाहिए उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो प्रोवाइड की जा सके. ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 8% ग्रोथ मानी गई है और अगर आप मूडी का एस्टिमेट माने तो 6.1% आज की तारीख में दिया गया है और एडीबी ने एस्टिमेट दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 7% होगी, जिसके तहत ये रेपो रेट एक काफी अच्छा है, जबकि वर्ल्ड मार्केट्स 2% पे ग्रो कर रही हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं वो आती हैं महंगाई दर से, इन्फ्लेशन से, जो फूड इन्फ्लेशन में हो सकता है और खासतौर पे एनर्जी प्राइसेस, जिसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. और एक जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, जो हो सकती है अगर एफआईआईज आउटफ्लो होता है तो, जिसके तहत आरबीआई ने काफी कदम उठाए हैं, जहां पे 648 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन किए गए हैं और साथ ही साथ गोल्ड रिजर्व्स में बढ़ोतरी भी की गई है.
लगातार बढ़ती गर्मी और तापमान के बीच एक अच्छी खबर है. सरकार ने गर्मी के मौसम में देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों को चालू करने का फैसला किया है. गैस चालित केंद्रों से अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. ये आदेश अगले महीने की पहली तारीख से 30 जून तक मान्य रहेगा. गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत सभी गैस आधारित उत्पादन केंद्रों को निर्देश जारी किए हैं. ऊर्जा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि व्यावसायिक कारणों से गैस आधारित उत्पादन केंद्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में उपयोग में नहीं है. सरकार के आदेश का मकसद आने वाले समय में उच्च मांग के दौरान गैस आधारित उत्पादन केंद्रों से बिजली की जरूरतों को पूरा करना है. यह आदेश 1 मई से 30 जून तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए लागू रहेगा. यामिनी जी, कितनी राहत की बात इस गर्मी में?
जी देखिए, काफी राहत की बात, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो आवश्यक लोगों तक पहुंचे और उन्हीं से वो आगे अपना संचालन कर सके चीजों का, तो एक अच्छी ही खबर है.
जाहिर तौर.
ऑलराइट, वी नाउ हैव सतीश चंद्रा ऑनलाइन फ्रॉम दिल्ली. जी सतीश जी, अपना सवाल पूछें.
यामिनी जी, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इन्वेस्टर एजुकेशन फंड. दिस शेयर्स or transfer to investor education fund after 7 years of dividend if it is not credited. But my account number and everything is correct. Intentionally, companies are not transferring the dividend. Then they transfer it to investor education fund. Now, second point is, after completing all the formalities in investor education fund, they take almost more than 1 year to transfer back the shares. So, what is the remedy? Thank you.
See, you have to first check with the company what account details do they have. Usually when you buy a share through the DMAT account, the details of your bank are available through that means, which means whenever you buy, you have a DMAT account, it is always linked with your bank account. And automatically, since all the purchases of the shares are through physical form, unless you have invested in an unlisted company, so most of the dividends should come to your bank account. So please check what bank account number have you given in your DMAT account, and if it is not right, then please have it corrected. Second, again, if it's an unlisted company, then get it corrected with the company, because then only would the dividends go in some other account or remain unclaimed or would remain in the suspense accounts of the banks that have been transferred. When you also ask if they have been transferred to the investor education fund, if they have been transferred, then you will have to place in a request with the investor education fund to refund your particular shares. You should also put a complaint with the company stating that you have the particular requisite number of shares, and they must give you a justified reason for transferring the shares to the investor education fund. If you want to go further than that, you can ask them for compensation as well.
इसी बीच हमारे अगले कॉलर मुंबई से रवि हैं. रवि जी, मार्केट मित्र में आपका स्वागत. जी, प्रश्न पूछिए.
हाँ, नमस्कार. मार्केट मित्र जी, मुझे कुछ अच्छे सेक्टर जानने हैं.
आप थोड़ा सा क्लियर बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही.
हाँ, मुझे अच्छे सेक्टर जानने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 5 साल के लिए.
डिफेंस सेक्टर जानना है आपको अगले 5 साल के लिए?
सेक्टर.
सॉरी,
थोड़ा सा रवि जी,
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में जानना है? जी देखिए, डिफेंस एक अच्छा सेक्टर है, काफी ग्रोइंग सेक्टर है, और आज की स्थिति में जहां पे जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा हैं और जहां पे संभावनाएं इसराइल और हमास के वॉर की एस्केलेशंस की बढ़ गई हैं, वहां पे डिफेंस सेक्टर एक काफी जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर बन जाता है, क्योंकि काफी हद तक स्पेकुलेशंस वर्ल्ड वॉर तक जा रही हैं और चीजों तक जा रही हैं, और डिफेंस सेक्टर में काफी हद तक इनोवेशंस भी आई हैं और इंडिजनाइज भी किया गया है, जहां पे काफी चीजें प्रोड्यूस इंडिया में भी होंगी. तो ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, सोशल सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उन सबको देखते हुए ये एक काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर है.
वी ऑफन से डिफेंस सेक्टर इज सेंट्रल टू द आत्मनिर्भर भारत आइडियोलॉजी और द पॉलिसी. All right, let's take a look at the U.S. markets. U.S. stocks sold off on Friday after major U.S. banks' results failed to impress, capping a week marked by market-moving inflation data, evolving expectations for U.S. Federal Reserve policy, and looming geopolitical tensions. All the three major indices fell more than 1% and registered losses on the week. The Dow Jones Industrial Average fell 1.2%, the S&P 500 lost 1.4%, and Nasdaq Composite dropped 1.6%. We are now connected with Manish Chaudhary calling us from Delhi. Yes, Manish ji, please ask your question. Hello.
Hello.
Yeah. Your question, please. Yeah.
Hello.
Hello, yes. Aap sun pa rahe?
जी मैम,
नमस्कार जी. योर क्वेश्चन प्लीज.
मुझे ये पूछना था, ये जो होम लोन की जो रेट है आजकल, आपकी बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये प्राइवेट में हो जैसे आपको बजाज फाइनेंस, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कुछ इंक्रीज हुआ है क्या अभी फिलहाल?
जी देखिए, अभी कुछ बैंक्स ने इंटरेस्ट और डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए हैं, पर यह हर एक बैंक पे डिपेंड करता है कि वो किस होम लोन रेट पे देता है. बाकी स्पेसिफिकेशंस होम लोन की जो है आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक होती है, पर इंटरेस्ट रेट ज्यादातर कॉम्पिटिटिव होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा होम लोन्स डिस्पर्स कर सकें.
इसी बीच फरीदाबाद से हमारे श्रोता हैं विशाल. विशाल जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछें.
नमस्कार सर, मैम को भी नमस्कार.
जी नमस्कार.
मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के लिए, तो ऐसा कोई मतलब एसेट है जिसमें हम सिल्वर के लिए इन्वेस्ट कर पाएं? थैंक यू.
जी मुझे नॉलेज नहीं होगी कि अगर सिल्वर के लिए अभी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आया है, पर गोल्ड के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है और ईटीएस भी है जिसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश कर सकते हैं.
एक्चुअली इंटरेस्टिंगली यामिनी, ओवर द लास्ट फ्यू प्रोग्राम्स ऑन मार्केट मंत्रा एंड विभूति जी, यू बीन नोटिसिंग दैट सिल्वर हैज बीन गोइंग वेरी हाई. सो व्हाट गोज इन द बैक ऑफ माइंड इज द फ्रेज कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड प्रोबेबली और इज गोइंग टू बिकम द न्यू गोल्ड.
Well, with semiconductors and many others, yes, silver may appeal more than the others.
Mm-hmm. All right, let's take a look at the oil. Oil rose around 1% on Friday on geopolitical tensions in the Middle East, but posted a weekly loss on a bearish world oil demand growth forecast from the International Energy Agency, IEA, as we call it, and worries about slower U.S. interest rate cuts. Brent crude futures settled up 71 cents at $90.45 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude futures rose 64 cents to $85.66. For the week, Brent declined 0.8%, while WTI fell more than 1%. During the week, oil prices neared a six-month high on concern that Iran, the third largest OPEC producer, might retaliate for a suspected Israeli warplane attack on Iran's embassy in Damascus on Monday. Before we go any further, we have N.R. Prasad, another of our regular callers from Bengaluru. Yes, Mr. Prasad, please ask your question. Hello?
Hello?
Yes. Yes.
This is N.R. Prasad from Bangalore.
Yes. Yes.
Any specific reason for market to fell down on Friday? Yesterday, around Nifty fell down by 234. Bank Nifty fell down by over 422 points. Any specific reason for this? It was doing very well this week, but suddenly all of a sudden fell down. Any specific reason for the same?
Yeah, it is primarily because of the escalation of the geopolitical risks that has taken place, especially at the Israel-Hamas war that is there. And there have been speculations going on that Iran has been speculating some attack in future, and the U.S. has moved its requisite defense to ensure that the Iran attack can be taken care of.
Yamini, when we talk of, it's the nature of the markets to be sensitive. But we're doing very well at 70,000 plus. Nobody would have anticipated when you and many other experts would come and said it'll go beyond 55. We were wondering, really, and now we've actually touched 75. What are the factors that you think you can attribute to? Because even though we're slightly up and down, but we've been doing very, very well compared to the other markets in the world. What other basic factors do you think that we can contribute to for such a stable Sensex briefly?
Well, overall, I think to maintain the macroeconomic fundamentals would be the key. Hmm. And to ensure that the requisite support is given by the institutions and there is trust that remains in terms of the markets and the institutions.
बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे कि जो ये है कि वार वहां पे होगा, ईरान उस पर कुछ अटैक कर सकता है, तो ये भारत के लिए कितनी परेशानी की बात है इसमें, जहां तक तेल की कीमतों की बात है.
जी देखिए, काफी हद तक बहुत चीजें इफेक्ट होती हैं, क्योंकि अगर ये मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में कन्वर्ट होता है और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं और वॉर एस्केलेट होती है, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी जाती है, तो सिचुएशन ओवरऑल सभी मापदंडों पे काफी मुश्किल स्थिति पे होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि गुड सप्लाई में ऑलरेडी काफी हद तक इन्फ्लेशन का फैक्टर रहा है.
Right. Well, on that note, thank you, Dr. Yamini Agarwal, for joining us at Akashvani Studios and updating us with your precious views. And friends, before we close, is a reminder of the headlines. Anyone found to be indulging in forward trade of pulses would be dealt with firmly, says Consumer Affairs Secretary. To ensure maximum power generation during summer, the government has issued directions to all gas-based generating stations. In U.S. markets, all three major indices fell more than 1% and registered registered losses on the week. And oil rose around 1% on Friday on geopolitical tensions in the Middle East. Brent crude futures settled up at above $90 a barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vibhuti Mishra, signing off. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.